آگے فرما رہے ہیں منعم علیہم کا راستہ یہی بدل ہے، یعنی صراط مستقیم، اور یہی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے. جس نے اللہ والوں کا راستہ نہیں پکڑا وہ صراط مستقیم نہیں پکڑ سکتا. اب آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم، دیکھو یہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین یہ ہمارے اپنے ہیں، لیکن جن پر ہمارا غضب نازل ہوا وہ غیر ہیں. دیکھو غیروں سے مت ملنا، غیروں سے رابطہ مت رکھنا، ان کا راستہ مت چلنا، منافقین والا کام مت کرنا. منافق کافروں سے بھی ملتے تھے اور صحابہ سے ملتے، حقیقت میں کافر ہی تھے لیکن صرف اپنے آپ کو ظاہر مسلمان کرتے تھے. تو فرمایا منافقوں سے مت ملنا، جیسے کوئی خانقاہ میں مقیم رہے اور دل جوڑیا بازار میں رکھے یا گندی جگہوں پر، اس شخص کو فائدہ ہوگا شیخ کی صحبت سے. جسم اور دل دونوں فدا کرو خانقاہوں پر، اللہ والوں پر، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر وہ باغبانی فرمائیں گے کہ آپ ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے کہ کاغا سے ہنس کیو اور کرت نہ لاگی بار. ہم تو کوا تھے اور گندگی کھاتے تھے، اے میرے شیخ آپ نے ہمیں کوے سے ہنس چڑیا بنا دیا. بجائے کوے کو آپ دیکھیں گے دو چار مل جاتے ہیں اور گھوس کو کھاتے ہیں، مرے ہوئے چیزوں کو کھاتے ہیں، اور ہنس چڑیا جو ہے وہ موتی چگتا ہے. تو جو مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ کی یاد میں لگتا ہے، اور جو فاسق و فاجر ہوتا ہے وہ گانا سنتا ہے نامحرموں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، ہاں آج تو بہت مزہ آ گیا، اتنی بد نگاہی کر لی، فلانی سے ملاقات ہو گئی، فلانے سے ملاقات ہو، اور اللہ والے اس سے خوش ہوتے ہیں کہ آج کا دن تلاوت بھی خوب ہو گئی اور ذکر ہو گیا الحمدللہ، کہ آج کے دن کی قیمت وصول ہو گئی. لیکن یہی دونوں کے ذوق میں فرق ہے. تو کوے کا ذوق اور کرگس کا ذوق مردار کھانے والا ہے، اور شاہین اور شہباز کا ذوق زندہ شکار کرنے والا ہے. اور یہ جو حضرت فرما رہے ہیں کہ ہنس چڑیا یہ موتی چگتا ہے، لہذا یہ تمام گندے کاموں سے بچتا ہے. تو یہ مثال دی جا رہی ہے، کوا جو ہے وہ گندگی کھاتا ہے. یہ اصل میں ایک اللہ والے تھے، شاہ ابو المعالی رحم اللہ تعالی، قصہ ہمارے حضرت والا سناتے تھے کہ ان کے مرید تھے یہ بھیکا شاہ. نام ان کا کیا ہے، بعض دفعہ خانقاہوں میں اور صحابہ میں ہی نام غائب ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ کا نام کیا ہے، شاید پورے مجمع میں سے کسی دو چار کو معلوم ہو جو کچھ علم رکھتا ہے. امام ابو زکریا نووی رحم اللہ تعالی نے 35 دلائل سے مسلم شریف کی شرح میں ثابت کیا کہ ان کا نام عبد الرحمن ہے. پہلے عبد الشمس ان کا نام تھا، اور بعد میں نبی علیہ السلام نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا. لیکن ابو ہریرہ کیسے مشہور ہو گیا کہ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے، عرض کیا حرۃن یا رسول اللہ، میرے ہاتھوں میں آستین اتنی چوڑی ہوتی تھی صحابہ کی، اس سے بھی زیادہ، کہ بلی کا بچہ آستین میں تھا، یہ بلی کا بچہ ہے. فرمایا انتا ابا ہریرہ، تم بلی کے بچے کے ابا ہو. حرۃن بلی، ہریرہ بلی کا بچہ، تم بلی کے بچے کے ابا ہو. ابو ذر، ذر کا مطلب چوٹی، زے والا ذر نہیں ہے، ابو ذر زال سے ہے، اور زال سے جو ذر ہوتا ہے اس کا مطلب چیوٹی ہوتی، تو چیوٹی کے ابا. عرب میں یہ سب کنیتیں رکھی جاتی تھیں، لہذا آپ نے جب یہ فرمایا ابو ہریرہ تو صحابہ بھی ابو ہریرہ کہنے اور سننے لگے، اور صحابہ بھی بعض ان کا نام یعنی بھول گئے، محو ہو گیا، اور اتنا یہ نام مشہور ہو گیا. تو بعض دفعہ آدمی دوسرے ناموں سے مشہور ہو جاتا ہے اور اصل نام کو تلاش کیے. کیا وجہ ہوتی ہے، کسی پیارے نے ان کا یہ نام رکھ دیا، اب ان کا اپنا نام کھو گیا، اور اسی نام سے جس سے شیخ نے یاد کیا، نبی علیہ السلام نے یاد کیا، صحابہ نے یاد کیا، وہ مشہور ہو گئے. یہاں تک کہ لوگوں کو نام تلاش کرنا پڑتا ہے کہ ان کا اصلی نام کیا ہے. تو بہرحال حضرت بھیکا شاہ جو ہے ان کا بھی نام ہمیں بھی ابھی تک معلوم نہیں ہوا، کیونکہ یہ کوئی ایسی بڑی علمی شخصیت تو ہے نہیں کہ کوئی ان کی تحقیق کرے گا. ایک مرید کی حیثیت سے ان کا یہ قصہ مشہور ہے کہ حضرت شاہ ابو المعالی رحم اللہ تعالیٰ جو بڑے اللہ والے تھے، ان کے دربار میں یہ رہتے تھے، ان کے آنا جانا تھا. ایک دفعہ وہ ناراض ہو گئے، اور ناراض اللہ والے کبھی بھی دل سے نہیں ہوتے، اس بات کو سمجھنا چاہیے. بعض دفعہ ڈانٹ لگا دیتے ہیں، لیکن ڈانٹ کیوں لگاتے ہیں، کہ شیخ کی ڈانٹ سے مرید کی ڈینٹ نکل جاتی ہے. कार को जब एक्सीडेंट हो, खुदा ना खास्ता थोड़ा भी कुछ लग जाए तो क्या होता है, रूई से और फूल से सही नहीं करते भाई। इतनी महंगी गाड़ी है आजकल तो, 50 लाख की कोरोला है, इतनी महंगी, 1-1 करोड़ की गाड़ी, इससे भी ज्यादा। अब वो कहे तुम हथौड़े से इसकी खबर लोगे, कुछ तो होश लो के नाखून लो, कहेगा भाई इसके बगैर इसकी इसलाह नहीं हो सकती, हथौड़े से ही सही करना पड़ेगा। तो जो उसके डेंट निकालने के लिए डांट का इस्तेमाल जरूरी होता है, तो डांटते इसलिए नहीं है कि वो उसको हकीर समझते हैं या नफरत करते हैं, इसलिए ताकि उसकी इसलाह हो जाए। वो हथौड़ी इसलिए इस्तेमाल कर रहा है कि गाड़ी पहले की तरह खूबसूरत हो जाए, नीचे की तरह हथौड़ी लगाएगा हल्का सी और ऊपर वो चीज जो दब गई थी उड़ जाएगी, फिर उस पर वो कलर कर देगा। तो ये कलर भी करते हैं अल्लाह वाले। हमारे फरमाते थे कि अल्लाह वाले ऑपरेशन भी करते हैं, और कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं होता जो ऑपरेशन करके मरीज को छोड़ दे, ऑपरेशन कामयाब हो गया, सिया नहीं उसको, उसको सिलाई भी करता है, सिलाई करता है, रफू करता है, फिर मरहम लगाता है, फिर दवा देता है ताकि जल्दी खुश्क हो जाए। तो अगर अल्लाह वाले एक तरफ डांटते हैं तो दूसरी तरफ उनकी उनकी दिलजोई भी फरमाते हैं, हौसला अफजाई भी फरमाते हैं। मीर साहब की डांट पड़ रही हो, देखते नहीं उधर, देखते रहो, किस किस को देख रहे हो, वहां जाके बैठ जाओ, चौकीदारी करो, खबरदार जो आइंदा उधर उधर देखा। फिर बाद दफा फरमाए मीर साहब जो है वो सैयद हैं, और सैयदों की बड़ी इज्जत है, बड़ा एहतराम है, इनसे दुआएं करवाया करो, ये सैयद हैं। इस तरह वही दिलजोई, कभी दिलजोई हो रही है और कभी इसलाह हो रही है, दोनों काम साथ साथ। यहाँ तक कि हजरत मीर साहब हजरत वाला के पैर दबाते थे तो हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला से हजरत वाला ने पूछा कि मीर साहब मेरे पास रहते हैं और ये अपनी इसलाह के लिए रहते हैं, ये मेरे पैर दबाते हैं और ये सैयद हैं, मैं सैयद नहीं हूँ, मुझे शर्म आती है इनसे खिदमत लेते हुए। मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला ने हजरत से फरमाया क्योंकि ये इसलाह करवाने की नीयत से आए हैं और नफ्स इस तरह मिटता है, लिहाजा ये अपनी इसलाह के लिए पैर दबा सकते हैं और आप भी दबवा सकते हैं। तो ये देखिए इन तीन ये बात हजरत पूछते थे मुफ्तियों से ताकि कोई बात खिलाफ शरीयत तो सुन्नत ना हो। आज लोग औरतों से पैर दबवाते हैं, हजरत फरमाते जो औरतों से पैर दबवाए वो पीर नहीं है बल्कि पैर है खुद ही। या अमृत बच्चों से, जो खूबसूरत बच्चे होते हैं उनसे भी खिदमत ना ले और औरतों से भी खिदमत ना ले, जो दाढ़ी वाले मर्द हों उनसे खिदमत ले सकता है। तो बहरहाल ये अपनी खिदमत की नीयत से, तो अबुल माली रामुल्ला ताला क्या वो रहते थे शाहबुल माली जो उनके शेख थे, एक दफा वो नाराज हो गए और नाराजगी में ये भी होता चलो निकल जाओ खानकास, अब वो निकल गए, ख्वाजा साहब को भाई थानवी ने निकाल दिया, लेकिन जाके बाहर चौकट जो चौकट होती है साथ साथ बात दीवार के साथ चल रही होती, वहां जाके अपना बिस्तर लगा दिया और शेर लिख के भेजा, उधर वो दर ना खोलेंगे इधर मैं दर ना छोड़ूंगा, हुकूमत अपनी अपनी है, कहीं उनकी कहीं मेरी। अगर वो निकालने पे हुकूमत रखते हैं तो हम भी उनके दरबार से बाहर पड़े हुए, यहाँ से तो नहीं भगा सकते। बस रहम आ गया, और रहम आना ही होता है, ये तो देखते हैं कि ये भाग जाता है क्या करता है, लिहाजा फिर बुला लिया। इसे शाहबुल माली भी भाग नहीं गए कि चलो भाई किसी और क्या चले जाते हैं, बहुत सख्त हैं। हजरत फरमाते जो ना समझ होते हैं ये कहते हुए चले, अरे मियाँ बहुत फिरौन है, बेसामा है, इतने सख्त हैं, हमें और नरम पीर मिल जाएंगे, जाओ नरम पीर तलाश करो। हजरत शाह अब्दुल्लाह साहब रहमतुल्लाह ताला फरमाते थे कि नरमी से इसलाह अक्सर नहीं होती, चीनी डालिए चाय में और उसके बाद मुर्गी के पर से उसको हल कीजिए तो चीनी हल हो जाएगी। चलो भाई मोमबत्ती डाल दी, मोमबत्ती तो खुद हल हो जाएगी गर्म चाय में, हल करने के लिए कौन सा चम्मच, स्टेनलेस स्टैम्प का चम्मच चाहिए जिससे जो है वो खड़ खड़ की आवाज आती है, पर चीनी जब अपने वजूद को मिटाती है तब चाय में मिठास पैदा होती, सिर्फ डाल के छोड़ दिया। अब क्या रिसर्च कर ले इसके अंदर 2 चमचे चीनी है, मीठा नहीं, मीठी नहीं हुई चाय, क्यों मीठी कब नहीं हुई, कि उसको सही से चलाया नहीं गया, चलाने के लिए उस जोरदार चमचे की जरूरत है मुर्गी के पर से, तो इतनी नरमी से इसलाह नहीं होती, इसलाह के लिए सख्ती की जरूरत होती है। लिहाजा निकाल दिया, कुछ अरसे घूमते रहे, कई महीने हो गए घूमते रहे और बाद लोगों से पूछते थे हजरत याद करते हैं, हाँ याद तो करते हैं लेकिन अभी बुलाया नहीं है, तुम्हें अभी इजाजत नहीं मिली है। एक दफा ऐसा मौसम था बारिश होने वाली थी, लिहाजा अब पीरानी साहिबा ने कहा कि एक ही मुरीद था काम का, बाकी तो सारे कॉटन के कपड़े पहन के आके बैठे रहते हैं एहतराम के साथ, एक काम करता था चढ़ जाता था और हमारा छत सही कर देता था, उस जमाने में छप्पर होता था उसकी छत होती थी खपरेल की, तो ये सही कर देता था, अब वो चला गया, आपने उसको भगा दिया जो काम का आदमी। तो हजरत ने फरमाया भाई मैंने भगाया, तुमने तो नहीं भगाया, तुम बुलवा लो। हजरत को खुद चाहिए था कि उसको बुलवाना था, टाइम वक्त पूरा हो रहा था उसकी इसलाह का, लिहाजा मुरीद भेजा कि पीरानी साहिबा ने बुलाया है, बुलवाया है। फिर पीरानी साहिबा ने कहलवाया भाई हमारी छत सही कर दो। अब कोई ऐसा डर रहा होता कहता हाँ अब काम पड़ा है तो बुलाया, अब हम नहीं कर रहे, लेकिन फौरन चढ़ गए और छत सही करने लगे। उस जमाने की छतें भी बहुत छोटी होती थी, आज की तरह नहीं होती, 5-6 फीट की होती थी, सर उसके हाथ लग जाता था आराम से। हजरत छत सही कर रहे थे, इतने में हजरत शाहबुल मुआली रामुल्ला ताला बाहर निकले, खाना खा रहे थे तो देख लिया, मुरीद को देखा और देख के खुश हो गए कि काम कर दिया उसने। तो देखते कहा आ इधर आ भीख ले ले, उसने हजरत वाला ने फरमाया, उन्होंने ऊपर से छलांग लगा दी शौक में कि शेख ने याद फरमाया, ऊपर से छलांग लगाई। और जब हजरत शाहबुल मुआली रामुल्ला ताला ने उनको लुकमा खिलाया तो कहते हैं कि उसी लुकमे से उनके उनके अंदर उनकी निस्बत मौल्ला अता हो गई, निस्बत अता हो गई। इसी पर भीखा शाह ने फिर ये शेर फरमाया कि भीखा मुआली पर वारियां दिन में 100-100 बार। कितना लंबा किस्सा हो गया इसमें। भीखा मुआली पर वारियां दिन में 100-100 बार, कागा से हंस कियो और करत न लागी बार। भीखा मुआली पर वारियां, देखिए पुराने जमाने की उर्दू है जो हिंदी से पैदा हो रही थी, यानी भीखा अपने शेख पर कुर्बान और वारी, वारी तो आज भी कहते हैं, 100-100 बार कागा से हंस कियो। कागा पहले जमाने में हिंदी में अभी भी कौवे को कहते, हंस कर दिया, चिड़िया बना दिया। करत न लागी बार, और बनाने में ज्यादा देर भी नहीं लगी, चंद महीने में, थोड़ा सा पहले मुजाहदा करवाया और मुजाहदे के बाद जो मुशाहदा होता है वो बहुत ज्यादा होता है। लिहाजा ये हजरात कभी दिल से नाराज नहीं होते और ये सारे काम इसलिए होते हैं ताकि इनकी इसलाह हो जाए। जब नफ्स मिटता है तो रूह जिंदा होती है। नफ्स खुदरा कुछ मौरूमी फरमा रहे, नफ्स खुदरा कुछ जहाने जिंदा कुन, अपने नफ्स को मिटा दो तुमसे एक जहान जिंदा होगा। हम नफ्स को मिटाना नहीं चाहते और चमकना चाहते हैं, तो पहले नफ्स को मिटाया जाता है। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, और शायर कहता है कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। दाना कहे हमारी शान के खिलाफ है, हम जमीन में दफन होने के लिए नहीं है, बल्कि हमें कहीं मर्तबान में सजा के रखो, तो सजा के रखने से उसकी औलाद पैदा नहीं होगी, जमीन में दफन होने से उसमें से नस्लें निकलेंगी। कितनी नस्लें कि उसके बुस्ते एक उसके बाद फिर उसकी शाख यहाँ तक कि वो जिंदा रहेगा। तो लिहाजा जो अपने आप को मिटा देता है फिर अल्लाह ताला उसको चमकाते हैं और उससे लोगों को जिंदा करते हैं। अल्लाह ताला हमें भी अपने नफ्स की इसलाह की फिक्र नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي